देवा नवीन से मिलने गोयनका इंडस्ट्रीज आई हुई थी। वो वहां नवीन से रक्षित के बारे में बात करने के लिए आई हुई थी। देवा नहीं चाहती थी कि रक्षित की जिंदगी के 10 साल जेल के अंधेरों में बिताए और पूरी तरह तबाह हो जाए। अगर नवीन केस वापस ले लेते तो रक्षित आज़ाद हो सकता था। हालांकि देवा का साफ दिल और मासूमियत देखकर नवीन को हैरानी हुई। उन्होंने इस मामले में सोचने को कहा। उसके बाद आपस में बातें करते हुए नवीन ने अचानक देवा से इस बारे में पूछा कि आजकल वो किसके साथ रह रही है, तो देवा के चेहरे का रंग उड़ गया था। देवा ने गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल करके कहा, अपनी कलीग डॉक्टर के साथ रह रही हूँ। मैंने मॉम को बताया था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही सोच लेती हैं। आप उन्हें समझाइए कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मॉम से बात करता हूँ। वैसे भी वो इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं। ना तो ठीक से खाना खा रही हैं और ना ही नींद ले रही हैं। उसे तो बस तुम्हारे बारे में सब पता करना है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं प्रार्थना को समझाऊंगा और फिर हम साथ में एक अच्छा डिनर लेंगे, नवीन ने प्यार से कहा। उनका प्यार देखकर देवा के दिल में यही ख्याल आया कि इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों से बिना किसी शर्त के सच्चा प्यार करते हैं। वो जानती थी कि उसकी हरकतों की वजह से नवीन और प्रार्थना का दिल दुखेगा, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आर्यांश ही था जो उन्हें इस मुसीबत से निकल सकता था। देवा ने उन्हें हक किया और कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ और प्लीज़ आप मॉम से मेरे बिहाफ में ज़रूर बात कीजिएगा। इतना कहकर सारा फैसला नवीन पर छोड़कर देवा वहाँ से बाहर आ गई थी। वो जानती थी प्रार्थना उससे इतना नाराज क्यों है। प्रार्थना ने उससे बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन वो उन पर खरी नहीं उतर पाई थी। सब ठीक हो जाएगा देवा, बस एक कुछ ही दिनों की बात है और फिर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद हो जाओगी, देवा ने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी। उसके बाद देवा हॉस्पिटल जाने के बजाय सीधा सौरभ बजाज के घर पर पहुंची। उसे वहां पर जाना ही था क्योंकि उसने सौरभ बजाज की प्राइवेट डॉक्टर बनने का प्रपोजल जो एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ ही देर में देवा उनके एड्रेस पर पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि वो एक शानदार बड़ा सा विला था जिसके आगे काफ़ी सारी गार्डनिंग की गई थी। देवा ने सिक्योरिटी गार्ड को अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसने उसे आने की इजाज़त दे दी थी। देवा हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी तो सामने एक हाउस हेल्पर आई। जी, किससे मिलना है आपको, हाउस हेल्पर ने देवा से पूछा। मैं डॉक्टर देवा गोयनका हूँ, मिस्टर सौरभ बजाज के चेकअप के लिए आई थी, क्या आप मुझे उनके पास लेकर चल सकती हैं, देवा ने काफ़ी पोलाइटली जवाब दिया। हाउस हेल्पर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया, जैसे वो उसके आने का इंतजार कर रही हो। उसने देवा को सौरभ के कमरे तक पहुँचा दिया था। सौरभ उसे देखकर खुश हुआ। देवा ने सबसे पहले उसका चेकअप किया और फिर सौरभ से कहा, मिस्टर बजाज, आप काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो आपको फिर मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब आप ही की वजह से हैं डॉक्टर गोयनका, चलिए आइए साथ में चाय पीते हैं, सौरभ ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट हो रही है, देवा ने बहाना बनाया, वो सौरभ से ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी। सौरभ ने हंसकर कहा, आपकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड हैं, चलिए आइए बैठ भी जाइए, मैं मिस्टर रंधावा से बात कर लूँगा, इतनी दूर आई हैं तो एक कप चाय तो पीकर जाना चाहिए, खास हमारे गार्डन में उगाई गई चाय है। देवा को बार बार मना करना सही नहीं लगा तो वो बैठ गई। कुछ ही देर में उनके लिए चाय आ गई थी। चाय पीते हुए सौरभ ने और इनफॉर्मल होते हुए पूछा, मिस गोयनका क्या आप सिंगल हैं? सौरभ का सवाल सुनकर देवा चौंक गई थी। उसने हड़बड़ाकर कहा, हाँ अभी मैं सिंगल हूँ, अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए एक अच्छा लड़का बता सकता हूँ, सौरभ ने उसे गौर से देखते हुए कहा। देवा को समझ नहीं आया वो इस मामले में क्या कहे। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मुझे फिलहाल अपने करियर पर फोकस करना है और दूसरी बात, मैं ब्लाइंड डेट पर जाना पसंद नहीं करती, लेकिन अगर रिश्ता अच्छा हो तो क्या बुराई है, आपने मेरे भांजे आर्यांश कपूर का नाम तो सुना ही होगा, एक बार उससे मिलकर देखिए, वो आपको पसंद आएगा, बाहर से भले ही सख्त दिखता हो लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है, सौरभ ने जवाब दिया। देवा ने कभी नहीं सोचा था कि सौरभ उसके सामने आर्यांश का रिश्ता रखेगा। नहीं, मैं ठीक हूँ मिस्टर बजाज, और मिस्टर कपूर मेरे टाइप के नहीं है, देवा ने बहाना बनाया। बातों ही बातों में सौरभ उसे परखना चाहता था कि देवा आर्यांश के बारे में क्या सोचती है। देवा के मना करने के बावजूद सौरभ ने पीछा नहीं छोड़ा। सौरभ ने आगे कहा, ठीक है, फिर मेरे बेटे प्रियांक के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप तो उसे देख भी चुकी हैं, वो एक अच्छे इंसान है लेकिन मुझे लगता है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो खुद से फील होती है, आप ज़बरदस्ती किसी को पसंद नहीं कर सकते हैं, देवा ने इनडायरेक्टली मना करते हुए कहा। देवा के जवाब से सौरभ काफ़ी इम्प्रेस हुआ, उसने मना भी कर दिया और सौरभ का दिल भी नहीं दुखा। सौरभ ने सर हिलाकर कहा, मैं बस मजाक कर रहा था, प्रियंको आप काफ़ी अच्छी लगी, जब भी आपका शादी करने का ख्याल आए तो एक बार मेरे बेटे के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए मिस्टर बजाज, वैसे भी मैंने काफ़ी देर कर दी, हॉस्पिटल में इमरजेंसी केसेस आते रहते हैं, देवा ने बहाना बनाया और अपना बैग उठाकर जाने लगी। हॉस्पिटल में जब वो सौरभ से मिलती थी तो उसे काफी अपनापन महसूस होता था, लेकिन आज जिस तरह वो उसे बातों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, एक पल के लिए दीवा को लगा कि वो आर्यांश और उसके बारे में सब कुछ जानता है। आज सौरभ की मुस्कान के पीछे उसे एक चालबाज इंसान नजर आ रहा था। पहली बार वो आर्यांश की बात पर सहमत हुई और उसे सौरभ बजाज से अजीब सी चिढ़ महसूस होने लगी। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, सौरभ ने उसके पीछे आने की कोशिश की। दीवा अब और उसका सामना नहीं करना चाहती थी। दीवा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं मिस्टर बजाज, आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको आराम करना चाहिए, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर दीवा तेज कदमों से चलकर बाहर आई और सीधा लाइफ केयर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गई थी। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंची, नव्या उसके पास कुछ फाइल्स लेकर आ गई थी। दीवा काफी थकी हुई और परेशान लग रही थी। उसका मूड सही करने के लिए नव्या ने कहा, यहाँ हॉस्पिटल से थोड़ा ही आगे एक बेकरी खुली है, क्यों ना वहाँ जाकर वहाँ की पेस्ट्रीज और कपकेक ट्राई किए जाएं। नहीं नव्या, अभी नहीं, मैं थीसिस और बाकी कामों में बहुत बिजी रहती हूँ, मुझे ठीक से सोने तक का टाइम नहीं मिलता है, बाद में चलेंगे, दीवा ने बहाना बनाया। उसे ये आर्यांश के चलते करना पड़ रहा था, जो उसका जरा सा भी लेट आना बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसे अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस हो रहा था कि वो नव्या को सच भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि नव्या को आर्यांश पसंद था। दीवा के इनकार से नव्या का चेहरा उतर गया था। उसे यही लग रहा था कि दीवा और उसकी दोस्ती आगे नहीं बढ़ी है, शायद उनका कोई मैच नहीं था। नव्या का उतरा हुआ चेहरा देखकर दीवा ने कहा, एक बार थीसिस पूरी हो जाए फिर हम दोनों साथ में डिनर के लिए चलेंगे, बस कुछ ही दिनों की बात है। उसके इस तरह पहल करने पर नव्या खुश हो गई। वहीं दीवा भी इस उम्मीद में थी कि कुछ दिनों बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर आर्यांश उसे आजाद कर देगा। हॉस्पिटल से फ्री होकर दीवा वहां से आगे एक सुनसान रास्ते पर पहुंची, जहां आर्यांश उसका इंतजार कर रहा था। उसने एक नजर आर्यांश के चेहरे की तरफ देखा तो वो काफी गंभीर था। दीवा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी। पूरे रास्ते उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई।
घर पहुंचने के बाद दोनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर थे। वर्तिका वहां से जा चुकी थी, जिसके बाद दीवा थोड़ी मायूस हुई। उसकी मौजूदगी में दीवा को आर्यांश से डर कर नहीं रहना पड़ता था। डिनर के बाद जब वो दोनों साथ में बैठे थे, तब दीवा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, जल्दी बोलो। आर्यांश ने काफी बेरुखी से जवाब दिया, मुझे मजबूरी में तुम्हारे अंकल मिस्टर सौरभ बजाज का चेकअप करने के लिए उनके घर जाना पड़ा। मुझे हफ्ते में दो बार उन्हें चेकअप के लिए जाना ही होगा। आज जब मैं उनसे मिली तो वो ऐसी बात कर रहे थे जैसे उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में कुछ पता हो। क्या तुमने उन्हें कुछ बताया? दीवा ने आधी अधूरी बातें आर्यांश के सामने रख दी। वो जानती थी कि बाकी सब आर्यांश खुद ही समझ जाएगा। तो तुम्हें लगता है कि वो इंसान जिसे मैं मारना चाहता हूँ, वो मेरे इतने क्लोज है कि जाकर उसे अपनी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा? आर्यांश ने सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता ना, तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ, दीवा ने जवाब दिया। उसके लिए आर्यांश से सीधे तौर पर बात करना बहुत ही मुश्किल होता था। अचानक आर्यांश के चेहरे के भाव सर्द होने लगे थे। उसने बिना किसी भाव के कहा, तुम्हारे साथ रहना इतनी भी अच्छी बात नहीं है कि मैं चार लोगों के सामने जाकर बताऊं। दीवा ने चौंकते हुए आर्यांश के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे के भावों से साफ था कि वो मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। दीवा को इतना गुस्सा आया कि वो जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वो अपने होश खोकर आर्यांश से कभी बहस नहीं कर सकती थी। दीवा ने अपने गुस्से को काबू किया और काफी ठंडी आवाज में कहा, अगर मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए इतना ही शर्मनाक है तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों रखते हो? जाने क्यों नहीं देते? मुझे किसी की जिंदगी पर बोझ नहीं बनना है। अच्छा, तो तुम मौके का फायदा उठाकर यहाँ से जाना चाहती हो? एक बात साफ बता देता हूँ, मेरे लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट मायने नहीं रखता। जब तक मेरा तुमसे दिल नहीं भर जाता, तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना होगा, फिर चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, आर्यांश ने काफी क्रूरता के साथ कहा। आर्यांश की बात दीवा के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम मेरे साथ झूठ नहीं बोल सकते हो। तुमने प्रॉमिस किया था कि दो महीने पूरे होते ही तुम मुझे जाने दोगे। अब टाइम खत्म हो रहा है तो तुम ये सब बोल रहे हो? वो तब की बात थी, लेकिन अब मेरा मूड बदल गया है। मेरे साथ तमीज से पेश आओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही होगा, आर्यांश ने गुस्से में दबी आवाज में कहा। दीवा को उससे सबसे ज्यादा चिढ़ तब होती थी जब वो उसे धमकी देने पर आ जाता था। आज भी वो वही कर रहा था। दीवा का गुस्सा अब उसके बस के बाहर हो गया था। वो तेज सांस लेते हुए चिल्लाकर बोली, आर्यांश कपूर, तुम्हें धमकी देने के अलावा कुछ करना आता है? दीवा की बात सुनकर आर्यांश ने सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखा। अचानक उसके कदम दीवा की तरफ पड़ने लगे थे। उसने दीवा को एक झटके में अपनी बाहों में खींच लिया था। उसका चेहरा देखकर दीवा की दिल की धड़कनें डर के मारे तेज हो गई थीं। उसने गुस्से में आर्यांश को भला बुरा तो कह दिया था, लेकिन वो जानती थी कि इसकी सजा उसे ही मिलने वाली थी।